ये आकाशवाणी दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कथित आबकारी नीति घोटाले में जमानत दी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति मामले में आने वाले महीनों में उसके चार नेताओं की गिरफ्तारी की जा सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 37वें राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव हुनर में शास्त्रीय वाद्य एकल पर्क्यूशन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और सदर बाजार क्षेत्र में एक घर में आग लगने से दो बच्चियों की मृत्यु हुई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कथित आबकारी नीति घोटाले में जमानत दे दी। न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वर्ली की बेंच ने एक संयुक्त आदेश में कहा कि संजय सिंह जमानत की अवधि में राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि संजय सिंह की जमानत के अन्य शर्तें निचली अदालत द्वारा तय की जाएंगी। संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वे दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कथित आबकारी नीति घोटाले में जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह उनकी बेगुनाही का सबूत है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने अभी तक इस घोटाले में मनी ट्रेल साबित नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को सबूतों के बजाय गवाहों के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संजय सिंह को मिली जमानत न्यायपालिका के साथ जांच एजेंसियों की निष्पक्षता का प्रमाण है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ईडी द्वारा जमानत याचिका का विरोध नहीं करना यह साबित करता है कि जांच एजेंसी केवल तभी तक अभियुक्त की हिरासत मांगती है जब तक कानूनी रूप से आवश्यक न हो। आम आदमी पार्टी ने आज आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा शराब घोटाला मामले में आने वाले महीनों में इसके लिए और चार नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी नेता और दिल्ली के मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दो महीनों में उनके साथ सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बीच भाजपा में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किए जाने के आरोप पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल ने अपने बयान में बताया कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को कामकाज की रिपोर्ट किया करते थे। आज आतिशी ने दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का भी नाम लिया है। श्री सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त थी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 37वें राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव हुनर में शास्त्रीय वाद्य एकल पर्क्यूशन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वोकल सोलो श्रेणी में डीयू की टीम दूसरे स्थान पर रही। एक रिपोर्ट।
एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय कल्चर काउंसिल के डीन प्रोफेसर रविंदर ने बताया कि इस राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में प्राप्त सफलता विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित समर्पण, कड़ी मेहनत और जुनून का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि डीयू की उत्कृष्ट उपलब्धियां उनकी कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने, रचनात्मकता को पोषित करने और छात्रों के बीच सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। 28 मार्च से 1 अप्रैल तक लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस उत्सव में दिल्ली विश्वविद्यालय की टीमों ने कुल 4 श्रेणियों में भाग लिया था। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुगम मतदान के लिए समय समय पर कई प्रयोग किए हैं, इनमें ईवीएम और वीवीपैट भी एक है। रिपोर्ट।
भारत में चुनाव के लिए लंबे समय तक बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है, तब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। लोग पर्चियों पर वोट देते थे और उन्हें सील बंद मत पेटियों में डाल देते थे। इसके बाद लंबी और थकाऊ मतगणना प्रक्रिया हाथ से संपन्न की जाती थी। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में कागज का इस्तेमाल होता था और अत्यधिक समय लगता था, इससे गलती होने की आशंका भी रहती थी। 1990 के दशक के आखिर में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ। इनसे मतदान प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, कागज की पर्चियों का वोट देने के लिए इस्तेमाल बंद हो गया और मतगणना प्रक्रिया सुगम और आसान हो गई। दुर्गेश भदौरिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलेन अख्तर।
सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह संस्थापक बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ एलोपैथी उपचार पर आरोप लगाने और कुछ बीमारियों के इलाज के दावे से जुड़े पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ दायर भारतीय चिकित्सा संघ की याचिका की सुनवाई कर रही थी। एक रिपोर्ट।
न्यायालय ने कहा कि वे बालकृष्ण के हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं और उसमें दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करता है। शीर्ष न्यायालय ने आयुष मंत्रालय से पूछा कि एलोपैथिक दवाओं को कमतर दिखाने से जुड़े विज्ञापनों के लिए पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। न्यायालय ने रामदेव और बालकृष्ण को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का आखिरी मौका दिया है। प्रादेशिक समाचार के लिए स्पर्श सक्सेना।
प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और उनकी पत्नी अलका अरोड़ा समेत अन्य लोगों की 8,80,00,000 रूपये की कीमत वाली विभिन्न अचल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। एक प्रेस वक्तव्य में जांच एजेंसी ने बताया कि पीएमएलए कानून के तहत ये कार्रवाई की गई है। ईडी ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से संबंधित अपराध शामिल थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि जगदीश कुमार अरोड़ा ने अपने कार्यकाल में फ्लो मीटर के अनुबंध को बढ़ी हुई कीमत पर एक निजी कंपनी को 38 करोड़ रुपए में दिया था। एफआईआर के अनुसार इस कंपनी के तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के बावजूद भी ये अनुबंध प्रदान किया गया था। नियामक प्राधिकरण ट्राई ने आज राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024 के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित करने हेतु परामर्श पत्र जारी किया है। संचार मंत्रालय ने कहा कि प्रसारण उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने की विशाल संभावनाएं मौजूद हैं। परामर्श पत्र में भारत को वैश्विक कंटेंट हब बनाने के उद्देश्य से प्रसारण क्षेत्र में मौजूदा मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। पत्र में सार्वजनिक प्रसारण सेवा को बेहतर बनाने, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विभिन्न खंडों के मुद्दों, पायरेसी से निपटने और कंटेंट सामग्री की सुरक्षा पर भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। ये परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट www.try.gov.in पर अपलोड किया गया है। लोग 30 अप्रैल तक इस पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति बनाने के लिए ट्राई से सुझाव देने का अनुरोध किया था। नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ानों में देरी के लिए विस्तारा एयरलाइंस से रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने बताया कि एयरलाइंस को उड़ानों में देरी या उड़ान रद्द होने की स्थिति में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए के नियमों का पालन करना होगा। नागर विमानन मंत्रालय विस्तारा के विमानों के रद्द होने की स्थिति की निगरानी कर रहा है। हालांकि उड़ान परिचालन का प्रबंध एयरलाइंस खुद ही करती है। परिचालनगत कारणों से कई उड़ानें रद्द किए जाने की खबर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सताए जाने की हवा बनाकर आम आदमी पार्टी द्वारा समर्थन जुटाने के प्रयासों की आलोचना की है। नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली की एक अदालत ने ठोस सबूतों के आधार पर केजरीवाल को जेल भेजने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मामले में दिल्ली सरकार की स्थिति धीरे धीरे साफ हो रही है। केजरीवाल और जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में दिल्ली के रामलीला मैदान में आईएनडीआईए गठबंधन रैली पर कटाक्ष करते हुए श्री त्रिवेदी ने कहा कि खुद भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता ही वहां पहुंचे थे। राजधानी के सदर बाजार क्षेत्र में आज एक घर में आग लगने से दो बच्चियों की मौत हो गई। दमकल विभाग ने बताया कि दोपहर 2 बजे के करीब उन्हें आग लगने की सूचना मिली। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 5 गाड़ियों को करीब 1 घंटा लगा। उन्होंने बताया कि आग से धुएं से बच्चियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस पर दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने अपनी सांत्वना व्यक्त की है और जिला प्रशासन से इस हादसे की रिपोर्ट मांगी है। रोहिणी सेक्टर 7 के इनलेट लाइन पर फ्लो मीटर लगाने के काम के कारण राजधानी के कुछ क्षेत्रों में शुक्रवार और शनिवार को जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने एक प्रेस वक्तव्य के माध्यम से बताया कि 800 मिलीमीटर व्यास वाली ये फ्लो मीटर पश्चिमी दिल्ली मेन से निकलने वाली इनलेट लाइन पर शुक्रवार की सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के बीच लगेगी। इसके कारण रोहिणी सेक्टर 6, 7 और 8 में शुक्रवार को जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं होगी तथा शनिवार की सुबह पानी का बहाव निम्न दबाव पर आने की आशंका है। जल बोर्ड ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण की सलाह दी है। उन्होंने आपातकाल स्थिति में पानी के टैंकर मंगवाने के लिए जल बोर्ड के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने को भी कहा है। राजधानी में आज वायु गुणवत्ता का स्तर मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 था। 0 से 50 तक वायु गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। 51 से 100 तक के बीच वायु गुणवत्ता संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सामान्य तथा 201 से 300 के बीच इसे खराब माना जाता है। राजधानी में आज मौसम साफ रहा और दिन भर धूप खिली रही। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चलीं। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 33.5 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त हल्की बारिश होने की भी संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की टीमों के साथ कल पूरे राज्य में सभी संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सभी पुलिस अधिकारियों को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए विशेष नाके लगाने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में मतदान आखिरी चरण में यानी 1 जून को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कथित आबकारी नीति घोटाले में जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति मामले में आने वाले महीनों में उसके 4 नेताओं की गिरफ्तारी की जा सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 37वें राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव हुनर में शास्त्रीय वाद्य एकल पर्क्यूशन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और सदर बाजार क्षेत्र में एक घर में आग लगने से 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।